भागवतार की श्रृंखला में तीसरे स्कंद के 10वें अध्याय पर चर्चा है, तो इसके एक श्लोक को पढ़ेंगे, कृपया दोहराइए। ये च मे भगवन् पृष्टा त्वय्यर्था बहुवित्तमा तान्वदस्वानुपूर्व्येण छिन्दिः न सर्वसंशया। ये च मे भगवन् पृष्टा त्वय्यर्था बहुवित्तम् तान्वदस्वानुपूर्व्येण छिन्दिः न सर्वसंशयान्। ये च मे भगवन् पृष्टा त्वय्यर्था बहुवित्तमा तान्वदस्वानुपूर्व्येण छिन्दिः न सर्वसंशयान्। सभी च भी मैं मेरे द्वारा भगवन् हे शक्तिशाली पृष्ठ पूछे गए त्वयि आपसे अर्थाः प्रयोजन बहुवित्तमा हे परम विद्वान तान उन सबों का वदस्व कृपा करके वर्णन करें। आनुपूर्वेण आदि से अंत तक छिंदी ही कृपया समूल नष्ट करें। न मेरे सर्व समस्त संशयान संदेहों को। अनुवाद और तात्पर्य श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। हे महान विद्वान, कृपा करके मेरे सारे संशयों का निवारण करें और मैंने आपसे जो कुछ जिज्ञासा की है उसे आदि से अंत तक मुझे बताएं। तात्पर्य, विदुर ने मैत्रेय से सारे प्रासंगिक प्रश्न पूछे, क्योंकि वे अच्छी तरह जानते थे कि मैत्रेय उनकी जिज्ञासाओं के सारे बिंदुओं का उत्तर देने के लिए उचित व्यक्ति हैं। मनुष्य को अपने शिक्षक की योग्यताओं पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए और विशिष्ट आध्यात्मिक प्रश्नों के लिए किसी अभिज्ञ व्यक्ति के पास नहीं जाना चाहिए। जब शिक्षक से ऐसे प्रश्नों का काल्पनिक उत्तर मिले तो यह समय का अपव्यय मात्र है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्री गुरव श्रीयुत पदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादाम सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो पिछले अध्याय में ब्रह्मा जी ने प्रार्थनाएं कर ली, शक्ति प्राप्त की भगवान से। तो अब इस अध्याय में ब्रह्मा जी प्रारंभ करेंगे विसर्ग अर्थात अपने स्तर की, दूसरे स्तर की सृष्टि का। तो पहले 9 श्लोकों में ब्रह्मा जी कैसे सृष्टि की रचना प्रारंभ करते हैं इसका वर्णन दिया जाएगा, और फिर आगे समय के लक्षण दिए जाएंगे और 10 प्रकार की सृष्टियों का वर्णन इस अध्याय में होगा। तो वैसे ये पूरा अध्याय है। तो ब्रह्मा जी सृष्टि करना चाहते हैं, विदुर ने कहा, प्रश्न किए, जैसे हम लोग इस श्लोक में देख रहे हैं कि विदुर ने प्रश्न किए मैत्री मुनि से। प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि हमें ऐसे प्रासंगिक ऐसे प्रश्न जो हैं ये सही व्यक्ति से करने चाहिए। जो भी जिज्ञासाएं हैं वो सही व्यक्ति के पास जाकर करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी और व्यक्ति के पास जाएंगे और हमें ऐसे उत्तर मिलेगा जो काल्पनिक है तो उसका कोई लाभ नहीं है, समय का अपव्यय है। अर्थात प्रभुपाद समझा रहे हैं कि आध्यात्मिक जीवन ये जिज्ञासाओं से परिपूर्ण है। जीव के हृदय में, विदुर जैसे महान भक्त के हृदय में, परीक्षित महाराज के हृदय में जैसे जिज्ञासाएं आ रही हैं, हम सबके हृदय में जिज्ञासा आना स्वाभाविक है। तो ऐसा नहीं है कि कोई भक्ति मार्ग का पालन कर रहा है तो उसके हृदय में कोई जिज्ञासा नहीं होनी चाहिए, वो उसको बस जान लेना चाहिए कृष्ण सब कुछ है इसलिए कोई जिज्ञासा नहीं। जिज्ञासाएं आना स्वाभाविक है, लेकिन उन जिज्ञासाओं को निवारण, उनका हल, उनका उत्तर सही व्यक्ति से लेना ये भी आवश्यक है। क्योंकि अगर हम लोग गलत व्यक्ति से, जैसे प्रभुपाद उदाहरण दिया करते थे कि हम किसी दुकान में जाके पान वाले के पास जाकर तो हम लोग कोई भगवद गीता का चर्चा नहीं कर सकते। तो इसलिए जिनको अधिकार है उनसे हमें भागवत सुननी चाहिए, उनसे ज्ञान लेना चाहिए, ऐसे लोगों से नहीं जो ना तो उस जीवन का पालन करते हैं, ना ही वो किसी परंपरा का पालन करते हैं, ना ही उन्हें किसी ने अधिकार दिया है। ऐसे व्यक्तियों से जब हम भगवान का ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करते हैं तो ये केवल समय का अपव्यय है, समय बर्बादी है। क्यों? क्योंकि ऐसे लोग कल्पना से उत्तर देंगे। जैसे जब परंपरा में आए हुए आचार्यों से, गुरुओं से, भक्तों से प्रश्न किए जाते हैं तो वो आचार्यों के द्वारा बताए हुए मार्ग को, आचार्यों के द्वारा दिए गए उत्तर को दोहराते हैं, बस इतना ही वो करते हैं। और इसी के कारण जो ज्ञान होता है वो शुद्ध रहता है। लेकिन जो परंपरा में नहीं है, प्रामाणिक आचार्य का पालन नहीं करता, ऐसा व्यक्ति अपने मन से उत्तर देगा, कल्पना से उत्तर देगा और वो उत्तर ठीक नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसकी कल्पना शास्त्र पर आधारित नहीं है, ऋषि मुनियों के द्वारा अनुमोदित नहीं है, भगवान के द्वारा अनुमोदित नहीं है। इसीलिए ऐसी कल्पना से केवल समय की बर्बादी है, प्रभुपाद लिख रहे हैं। और वो कल्पना क्यों है? क्या व्यक्ति अपनी बुद्धि लगाकर नहीं कार्य कर सकता? ऐसा क्यों माना जाता है कि जो परंपरा में नहीं आएगा वो जो भी कहेगा वो कल्पना होगी? ऐसा इसलिए माना जाता है कि जो भी कल्पना, जो भी व्यक्ति कल्पना करता है अपनी बुद्धि से, वो कल्पना ही है। जो भी कार्य करता है, जो भी ज्ञान प्राप्त करता है, वो कल्पना है। कब तक? जब तक वो परम सत्य भगवान से, कृष्ण से नहीं जुड़ती है ठीक परंपरा में। जब हम परंपरा से ज्ञान लेते हैं तो कल्पना नहीं है। क्यों? क्योंकि कृष्ण ने ज्ञान दिया ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने नारद को, नारद ने आगे, ऐसे हम परंपरा से ले रहे हैं, तो ये कल्पना नहीं है। लेकिन जब हम अपने मन से किसी चीज को प्रकट करने का प्रयास करते हैं तो वो कल्पना है और वो समय की बर्बादी है। तो प्रभुपाद इस तात्पर्य में यही समझा रहे हैं कि हमें किसी ऐसे व्यक्ति से ज्ञान नहीं लेना चाहिए। और दूसरी बात बता रहे हैं कि जब हम ऐसे व्यक्ति के पास जाएं जो प्रमाणिक है, जो भक्त है, उससे हमें आध्यात्मिक ज्ञान लेने का प्रयास करना चाहिए। फिर उससे हमें कोई भौतिक चीजें पूछकर समय की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। तो दोनों तरह से समय के अपव्यय, समय की बर्बादी हो सकती है। एक, अगर हम आध्यात्मिक प्रश्न गलत व्यक्ति से पूछते हैं, और दूसरा, अगर हम भौतिक प्रश्न आध्यात्मिक व्यक्ति से पूछते हैं। तो इस तरह से हमें जीवन में जानना चाहिए कि जिज्ञासा बड़ी आवश्यक है और इसको करना चाहिए, जैसे विदुर यहाँ पर कर रहे हैं। तो इसके आगे वर्णन किया गया कि कैसे ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना प्रारंभ की। बहुत छोटा सा अध्याय है, प्रभुपाद ने भी बहुत कम तात्पर्य लिखे हैं, लेकिन उन्हीं तात्पर्यों में बड़े महत्वपूर्ण बातों को जोड़ दिया। जैसे इस तात्पर्य में एक बात महत्वपूर्ण, फिर आगे वर्णन करते हैं कि अब ब्रह्मा जी सृष्टि करना चाहते हैं। ब्रह्मा जी ने देखा कि मैं कमल पुष्प के ऊपर बैठा हुआ हूँ, ये सारा जो कमल है ये पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है, तो अब मुझे इसमें ब्रह्मांड में रहने के लिए स्थान बनाने हैं, रचना करनी है। तो अचानक देखा कि वो जो फूल है वो बड़ी तेजी से हिलने लगा, और वो फूल ही नहीं, नीचे जो जल था वो भी हिल रहा था बड़ी तेजी से हवा के कारण। आप सोचिए, जिस पर आप बैठे हैं वही पूरा हिल रहा है, यानी सारा ब्रह्मांड हिल रहा था, जिसमें 14 भवन होंगे वो सारा हिल रहा था। तो स्वाभाविक है, इसको देखकर कोई भी घबरा जाएगा, बड़ी तेजी से हिल रहा है। लेकिन वहां वर्णन है कि जब ब्रह्मा जी ने देखा तो क्योंकि ब्रह्मा जी ने तपस्या के द्वारा दिव्य ज्ञान को प्राप्त किया था, और इसीलिए ब्रह्मा जी उसको, हवा को, उस जल को पी गए ताकि सब शांत हो गया। अर्थ क्या है कि जब ब्रह्मा जी अब सृष्टि करना चाहते हैं, प्रभुपाद ये तात्पर्य में समझाते, बड़ी अच्छी बात। ब्रह्मा जी सृष्टि करना चाहते हैं। सृष्टि क्या है? भगवान की सेवा कर रहे हैं, अपने लिए तो कुछ नहीं बना रहे हैं, भगवान की सेवा के हेतु भौतिक जगत। लेकिन उसमें भी कष्ट आ गया, लेकिन क्योंकि ब्रह्मा जी ने तपस्या की, ज्ञान में स्थित हैं ब्रह्मा जी, वो उसको सहन कर सके, वो उसके परे आ सके। तो इसी तरह जब हम लोग भक्ति करते हैं तो भक्ति करते समय बहुत से ऐसे कष्ट हमारे जीवन में आते हैं। भगवान की सेवा करते समय, फिर कोई भक्त सोच सकता है मैं तो भगवान की सेवा कर रहा हूँ, अपने लिए कुछ नहीं कर रहा, फिर जीवन में कष्ट क्यों है? ब्रह्मा जी का उदाहरण, ब्रह्मा जी तो अपने लिए कुछ नहीं कर रहे थे, भगवान ने आदेश दिया सृष्टि की रचना करो, सृष्टि की रचना कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कष्ट आ रहे हैं। लेकिन ब्रह्मा जी उन कष्टों को सहन कर सके, उनका उपाय ढूंढ सके, उसका कारण उनकी तपस्या और दिव्य ज्ञान। तो इसीलिए अगर हम लोग भी चाहते हैं कि हम लोग भक्ति में आगे बढ़ें, भक्ति में आने वाली बाधाओं को दूर कर सकें, भगवान की सेवा कर सकें, अपने उद्देश्य को पूरा कर सकें, तो हमें भी ये तपस्या और ज्ञान प्राप्ति आवश्यक है। तो ऐसे ब्रह्मा जी वर्णन करते हैं, प्रयास करते हैं सृष्टि करने का, और फिर वो उस कमल को, कमल की डंडी को पहले 3 भागों में और फिर 14 भागों में विभाजित करते हैं। अर्थात पहले 3 भुवनों के निर्माण करते हैं, तीनों भुवन ऊपरी लोक, मध्य के लोक और निचले लोक, फिर उसमें 14 भुवन बना देते हैं। तो 14 भुवन ब्रह्मलोक से लेकर नीचे पाताल तक, ये 14 भुवन हैं। पृथ्वी 7वें स्तर पर आती है और फिर पृथ्वी के नीचे जो लोक हैं वो निचले लोक कहलाते हैं, जहाँ प्रकाश नहीं जाता सूर्य का, लेकिन वहाँ बड़ा ऐश्वर्य है। वो नरक नहीं है, वो निचले लोक हैं। दो चीज़ें हैं अंतर, निचले लोक और नरक। नरक उनके नीचे है, लेकिन ये जो निचले लोक हैं, जैसे सुतल, अतल, वितल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल, ये सारे जो रहें, ये बड़े ऐश्वर्यशाली स्थान हैं। सुतल लोक में तो स्वयं बलि महाराज रहते हैं, तो और जो महातल है उसमें भी बहुत ऐश्वर्य है। वहाँ पर जो सर्प हैं, उन सर्पों के सर पे बहुत प्रकाशमान मणियाँ हैं और उनकी मणि के प्रकाश से सारा लोक प्रकाशमय रहता। तो इसलिए बड़े ऐश्वर्यशाली लोक हैं, इनको भी स्वर्ग कहा जाता है। 3 प्रकार के स्वर्ग हैं, त्रिभुवन अर्थात 3 स्वर्ग हैं। एक स्वर्ग है जो देवताओं का है, इसलिए वो दिव्य स्वर्ग कहा जाता है। दूसरा स्वर्ग जो पृथ्वी पर है उसे भौम स्वर्ग कहा जाता है, और तीसरा स्वर्ग जो निचले लोकों को कहा जाता है उन्हें बिल्व स्वर्ग कहा जाता है। तो तीनों को स्वर्ग कहा गया क्योंकि तीनों स्थानों पर ऐश्वर्य है। पृथ्वी में भी ऐसे कई स्थान हैं जो हम देख नहीं पाते हैं, लेकिन वे स्थान बड़े ऐश्वर्यशाली हैं। इनका वर्णन महाभारत में किया गया, जब द्रौपदी के लिए पुष्प लेने भीम गए थे तो भीम ऐसे स्थानों में गए जहाँ मनुष्यों के लिए प्रवेश वर्जित है, जा नहीं सकते मनुष्य, क्योंकि भीम साधारण मनुष्य नहीं थे, इसीलिए वहाँ प्रवेश कर सके। तो हिमालय आज जो हमें दिखता है वो पूर्ण हिमालय नहीं है, उसके परे भी, उससे अलग भी हिमालय में ही कई स्थान हैं जो हम दर्शन नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, वो देवताओं के लिए हैं। तो ऐसा एक स्वर्ग है जिसे भौम स्वर्ग कहते हैं, अर्थात भूमि पर, पृथ्वी पर रहने वाले भी कई देवता हैं, कई श्रेणियां हैं देवताओं की जो पृथ्वी पर रहते हैं, फिर कुछ रहते हैं दिव्य स्वर्ग में। और बिल्व स्वर्ग वैसे तो असुरों के लिए है, लेकिन है बड़ा ऐश्वर्यशाली। तो ऐसे ब्रह्मा जी ने 3 भुवन बनाए और फिर उनको 14 भुवनों में, 14 लोकों में बांट दिया। ये 14 लोक किस लिए बनाए? क्योंकि जीव तो थे ही, जब सृष्टि की रचना हुई तो भगवान ने सब कुछ बना दिया था, जीवों को भी दे दिया था, तो अब उन जीवों को बस शरीर प्रदान करना है और वो कहाँ रहेंगे। तो इसीलिए भगवान की बनाई हुई सृष्टि को अब आगे ब्रह्मा जी करने जा रहे हैं। तो ऐसे ब्रह्मा जी ने जितने भी लोक हैं उनको बनाया, ऐसा वर्णन किया गया। और फिर ब्रह्मा जी अब ये बना रहे हैं तो मैत्रेय मुनि से एक प्रश्न कर लिया विदुर ने कि ये सब कुछ जो हो रहा है, आपने कहा काल के प्रभाव से हो रहा है, तो काल क्या है, समय क्या है, इसके क्या लक्षण है? ये प्रश्न उनसे वो करते हैं कि कैसे काल आता है, इसका वर्णन कीजिए। तो उस समय 10वें श्लोक से लेकर 13वें तक काल के लक्षणों का वर्णन वो करते हैं कि काल कैसे कैसे सबको प्रभावित करता है। ये जो सृष्टि है इसके निर्माण का कारण काल है, क्योंकि जब भगवान दृष्टिपात करते हैं तो दृष्टि के द्वारा जब वो जीवों को प्रधान में, महत्त्व में भेजते हैं, तो जो हलचल होती है वो काल के मिश्रण से होती है। तो इसीलिए काल बड़ा प्रभावी है। और इस जगत में हम लोग देखते हैं वो है क्या वैसे काल, भगवान की शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। इसीलिए भगवद गीता में भगवान कहते कालोस्मी, काल मैं हूं। तो भगवान की शक्ति प्रकट होती है काल के रूप में। तो भगवान काल के रूप में सब कुछ प्रकट भी करते हैं, बनाए भी रखते हैं और विनाश भी कर देते हैं। और काल का कोई आदि नहीं है, काल ऐसे नहीं कि इस समय शुरू हुआ, इधर हुआ, आदि नहीं है, अंत नहीं है। इसका वर्णन किया गया है कि काल क्या है, किस तरह के उसके लक्षण हैं, तो उसकी कोई शुरुआत नहीं है और उसका कोई अंत नहीं है। और काल भगवान की शक्ति है। और इस जगत में, इस ब्रह्मांड में, इस भौतिक जगत में हम सब काल के प्रभाव में हैं। जो भी कुछ हो रहा है काल के प्रभाव से, हमारा शरीर जन्म लेता है काल के प्रभाव से, शरीर बढ़ता है काल के प्रभाव से, शरीर बूढ़ा हो जाता है काल के प्रभाव से, मर जाता है काल के प्रभाव से, समाप्त हो जाता है, मरता तो नहीं, शरीर तो वैसे ही मृत है। तो ये सब काल के प्रभाव से, काल बड़ा प्रभावी है। और क्योंकि काल भगवान की शक्ति है, इसीलिए इसके परे कोई जा नहीं सकता। काल को समझना चाहिए, काल अर्थात समय। तो क्योंकि समय भगवान की शक्ति है, इसको भगवान के लिए उपयोग करना चाहिए, ये महत्वपूर्ण है। भगवान की शक्ति को भगवान की सेवा में लगाना। तो एक बहुत महत्वपूर्ण गुण उस भक्त का होता है जो भक्ति में आगे बढ़ा हुआ है, उसको वर्णन किया गया है अव्यर्थ कालत्वम। वो व्यक्ति समय बर्बाद नहीं करता किसी भी चीज में, हर क्षण को भगवान की सेवा में लगाता है। तो जो व्यक्ति काल को भगवान की सेवा में लगाता है वो काल के परे चला जाता है। लेकिन जो व्यक्ति काल में अपने आनंद को ढूंढता है या काल को अपनी प्रगति, अपने भौतिक इच्छाओं के लिए लगाता है, वो काल में और फंसता जाता है। काल एक जाल की तरह है, उससे बाहर निकलने के लिए उसका उपयोग भगवान की सेवा में, क्योंकि भगवान की शक्ति है। जब भगवान की सेवा में इस्तेमाल होती है तो वो हमें मदद करती है। जैसे भौतिक प्रकृति, जब हम इस भौतिक प्रकृति को भगवान की सेवा में लगाते हैं तो हमें मदद करती है भगवान के पास जाने के लिए। अपनी सेवा में लगाते हैं तो बंधन का कारण है। इसी तरह काल, काल को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। कैसे लगाना चाहिए? एक क्षण भी व्यर्थ नहीं करना चाहिए। जितना समय है हमारे पास, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि समय कितना है, काल की अवधि कितनी है, हमारी सांसें कितनी हैं, हम नहीं जानते। इसीलिए हर सांस को, हर क्षण को भगवान की सेवा में इस्तेमाल करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? सतत उनके नाम का कीर्तन कर सकते हैं, श्रवण कर सकते हैं, कथा कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, हर क्षण भगवान की सेवा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे हमें भगवान की सेवा में काल को इस्तेमाल करना चाहिए। और फिर ब्रह्मा जी की सृष्टि के प्रारंभ में, अब फिर आगे 10 प्रकार की सृष्टियों का वर्णन किया गया। 14वें श्लोक से लेकर अंतिम श्लोक तक 10 प्रकार की सृष्टियां, कि किस किस प्रकार की सृष्टि होती हैं, जिनमें से 6 प्रकार की सृष्टि महाविष्णु के स्तर पर होती है, जिसे सर्ग कहा जाता है। 3 प्रकार की सृष्टियां ब्रह्मा जी करते हैं और 1 प्रकार की सृष्टि दोनों में आती है, सर्ग और विसर्ग में। ऐसे 10 सृष्टियों का वर्णन इस अध्याय में हुआ। और एक महत्वपूर्ण वर्णन इस अध्याय में किया गया प्रलय का। तो 3 प्रकार के प्रलय बताए गए हैं, एक जो ब्रह्मा जी के जीवन के अंत में होता है, एक जो ब्रह्मा जी के दिन के अंत में होता है, एक जो हम सबके शरीर के अंत में होता है, शरीर समाप्त होता है, वो भी एक छोटा सा प्रलय माना गया। प्रलय अर्थात समाप्त हो जाता है शरीर। तो शरीर का प्रलय, ब्रह्मा जी के दिवस के अंत में प्रलय, और ब्रह्मा जी के जन्म मृत्यु के समय प्रलय। वैसे आगे चलकर 12वें स्कंद में एक और प्रलय बताया जाएगा, और वो होगा हमारे भौतिक अस्तित्व का प्रलय। तो वो वर्णन 12वें स्कंद में आएगा। तो प्रलय मतलब ये जो ब्रह्मा जी जब जन्म लेते हैं तो हर दिन जब ब्रह्मा जी सोने जाते हैं तो एक प्रलय हो जाता है। प्रलय अर्थात जितने भी नीचे के लोक हैं, पृथ्वी और उससे नीचे इत्यादि स्वर्ग तक, ये सारे लोक जल में मग्न हो जाते हैं पूर्ण रूप से। और उस समय ब्रह्मा जी सारे जीवों को लेकर गर्भोदक्षाय विष्णु के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और पूरा एक रात अर्थात 1000 चतुर्युग जीव वहीं रहते हैं उस अवस्था में। और फिर जब ब्रह्मा जी उठते हैं तो फिर से सृष्टि करते हैं और भूल जाते हैं। जैसे इसमें हम लोग देख रहे हैं पिछले अध्याय में ब्रह्मा जी भूल गए, भगवान ने कहा तुम्हें पता है तुम कर चुके हो करो फिर से। तो ब्रह्मा जी हर रोज सृष्टि करते हैं, सुबह उठते हैं फिर भगवान की तपस्या करते हैं, भगवान ज्ञान देते हैं, ब्रह्मा जी सृष्टि कर देते हैं। ये ब्रह्मा जी का रोज का काम है। तो एक प्रलय होता है। वैसे आचार्यों ने कई और प्रलयों का वर्णन किया है, छोटे छोटे प्रलय। जैसे आचार्य वर्णन करते हैं, अलग अलग वर्णन है, जीव गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, तो वे लोग कहते हैं कि एक प्रलय तब भी होता है जब युग बदलता है, तब भी छोटा सा प्रलय होता है। तब इतना बड़ा प्रलय नहीं होता कि सारी पृथ्वी पानी में डूब जाती है या सब कुछ बदल जाता है, लेकिन थोड़े बहुत भौगोलिक बदलाव होते हैं। इसका प्रमाण देने के लिए वो कहते हैं कि जिस समय भीम गए थे तो एक स्थान पर उनका वर्णन है कि भीम ने दो बड़े बड़े पर्वतों को पार किया, लेकिन आज अगर वो स्थान देखा जाए तो वहां पर पर्वत नहीं है, दो द्वीप हैं, अंडमान और निकोबार, ये दो द्वीप हैं। तो ये द्वीप पहले उस समय पे दो पर्वत कहे गए हैं। तो ये कहते कि उसका अर्थ है कि उस समय वो पर्वत थे, जब युग बदला तो थोड़ा सा प्रलय होने से अब वो पानी में चले गए, वो द्वीप बन गए। तो ऐसा भी एक प्रलय होता है जब युग बदलते हैं, या फिर जब मनवंतर समाप्त होता है तब छोटा सा प्रलय होता है। लेकिन जब ब्रह्मा जी का दिन समाप्त होता है तो सारे, और जब ब्रह्मा जी का जीवन समाप्त होता है, ब्रह्मा जी का जीवन कितना बड़ा है, 100 वर्ष, एक दिन उनका 2000 चतुर्युग हो जाते हैं, एक दिन और एक रात मिलाकर, ऐसे 30 दिनों का महीना होता है उनका, 12 महीनों का साल, और ऐसे 100 साल तक ब्रह्मा जी जीते हैं, इतनी लंबी आयु है उनकी। और जब उनकी मृत्यु होती है, जब वो देह त्यागते हैं, तो उस समय भी, उस समय बहुत बड़ा प्रलय होता, महाप्रलय। तो वो सारे जो ब्रह्मांड है वो पूरा ब्रह्मांड भगवान के शरीर में चला जाता है। तो ऐसे 3 प्रलयों का भी वर्णन किया इस अध्याय में। और फिर सृष्टि का वर्णन करने लगे अलग अलग प्रकार की, मैत्रेय मुनि अब सृष्टि का वर्णन कर रहे हैं। तो 6 सृष्टियां वो कहते हैं जो सर्ग में होती हैं। हम लोग इसका वर्णन सुन चुके हैं पिछले अध्यायों में, महत्तत्व एक है, फिर दूसरी सृष्टि कही गई है मिथ्या अहंकार की, तीसरी सृष्टि इंद्रिय विषयों की, चौथी इंद्रिय की, 5वीं मन और देवता की, और 6ठी अज्ञान की। तो ये जो 6 प्रकार की सृष्टियाँ जो हम, जिनका थोड़ा बहुत संक्षेप में हम लोग सुन चुके हैं, तो ये सर्ग कहलाती हैं पहले स्तर की। अब दूसरे स्तर की सृष्टि ब्रह्मा जी क्या करते हैं, तो 7वीं सृष्टि बताई गई जहाँ ब्रह्मा जी पेड़ पौधों को प्रकट करते हैं, 8वीं सृष्टि जहाँ ब्रह्मा जी पशुओं को प्रकट करते हैं, 9वीं सृष्टि जहाँ ब्रह्मा जी मनुष्यों को प्रकट करते हैं। तो ये भी सृष्टि, ये ब्रह्मा जी के स्तर की सृष्टि है। तो ब्रह्मा जी अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे प्रकट करवाते हैं, मतलब शरीर प्रदान कर रहे हैं, और ये सारी व्यवस्था इत्यादि भगवान ने की है, बस ब्रह्मा जी थोड़ा सा उनको रूप देकर प्रकट करते हैं। तो इसी तरह पेड़ पौधे आते हैं, पशु आते हैं, मनुष्य आते हैं, इन सब की रचना ब्रह्मा जी कर रहे हैं। तो ये प्रमाण है कि ये जो वैज्ञानिक एक सिद्धांत देते हैं कि पहले केवल एक पशु था या पहले केवल एक था, फिर धीरे धीरे वो बदला, फिर उससे मनुष्य आ गया, ये गलत सिद्धांत है भागवत के अनुसार, क्योंकि ब्रह्मा जी इनकी सृष्टि एक साथ करते हैं सबकी। तो मनुष्य भी होते हैं, पशु भी होते हैं, सब हैं। तो जो बताया गया कि कई वर्षों तक केवल पशु थे, फिर धीरे धीरे वो पशु अलग अलग बदले, छोटा पशु बड़े में हो गया, बड़ा पशु मनुष्य बन गया इत्यादि, हम सब बंदरों से आए, वानरों से आए, ये सब बताया जाता है। ये सब भागवत के सिद्धांत के अनुसार गलत है। इनफैक्ट कहना चाहिए कि ब्रह्मा जी ने तो पहले मनुष्यों की रचना की, उसके बाद फिर बाकी सब आए। तो ऐसे इस रचना को वर्णन किया गया, अलग अलग प्रकार की रचनाओं का इस सृष्टि के वर्णन किया गया, और किस प्रकार से देवताओं की अंतिम जो सृष्टि बताई दसवीं प्रकार की, वो देवताओं की आठ प्रकार के देवताओं की वर्णन किया गया, जिनमें गंधर्व, अप्सराएं, पितृगण और इत्यादि सब आते हैं। तो ये आठ प्रकार के देवताओं को सृष्टि ब्रह्मा जी करते हैं। तो ऐसे ये दस प्रकार की सृष्टि का वर्णन करके फिर मैत्री मुनि कहते हैं कि अब मैं तुम्हें मनुओं का वर्णन करूँगा, मनुओं के वंशजों का, जिनके बल से विश्व प्रपंच की सृष्टि, भगवान जो अलग अलग आगे सृष्टि प्रजन होती है मनु जो करते हैं, तो उसका वर्णन अब आगे वो श्लोकों में करने वाले। तो अगला अध्याय 11 और 12 इनमें ऐसे वर्णन आएगा, काल का भी थोड़ा और वर्णन आएगा, और फिर उसके बाद वराहदेव की कथा, क्योंकि जब मनुओं का वर्णन आएगा, मनुओं के वंशजों का वर्णन, तो फिर वराहदेव की कथा, चार कुमारों की उत्पत्ति होगी, और चार कुमारों की उत्पत्ति के बाद फिर कैसे वो वैकुंठ जाते हैं और क्या क्या होता है, ये हम लोग आगे के अध्याय में सुनेंगे। हरे